ईशानी को जलाने के लिए आलिया को कुछ नहीं सूझा तो वो जानबूझकर संजना को रुद्राक्ष के फ्लोर पर लेकर पहुंची। संजना और रुद्राक्ष के रिश्ते के बारे में ईशानी से छिपा हुआ नहीं था। रुद्राक्ष ने पहले ही ईशानी को अंदर भेज दिया था। उसने आलिया को भी संजना को वहां से लेकर जाने के लिए कहा, लेकिन ईशानी तभी वहां पर आ गई। रुद्राक्ष उन लोगों की बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो काम करने के लिए अपने केबिन में चला गया। तो वहीं अब लिविंग रूम में ईशानी, आलिया और संजना अकेली थीं। ईशानी ने इस वक्त रुद्राक्ष का शर्ट पहना हुआ था। उसकी तरफ देखते हुए आलिया ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, देखा संजना तुमने, इस जैसी लड़कियों को अच्छे से पता होता है कि किसी भी लड़के को कैसे सेड्यूस करना होता है। इसकी बहन ने भी यही किया था, वैनिटी में घुस गई और जाकर सारे कपड़े निकाल दिए। अब देखो इसने भी जानबूझकर गिने चुने कपड़े पहन रखे हैं, वो भी मेरे ही भाई के। संजना ने गुस्से से ईशानी की तरफ देखकर कहा, हाँ दिख रहा है मुझे आलिया, रुद्राक्ष की जेनरोसिटी का ये काफी अच्छे से फायदा उठा रही है। देखते हैं कब तक यहाँ पर टिकती है, कभी ना कभी तो इसे यहाँ से जाना ही होगा। डोंट वरी संजना, बस सिर्फ 6 महीने की बात है, डाइवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं, बाकी राहुल अंकल देख लेंगे। 6 महीने बाद ये अपनी असली जगह पर होगी, तब इसे मैं बताऊंगी कि आलिया खुराना से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अब तक ये रुद्राक्ष भाई के पास है तो मुझसे बची हुई है, आलिया ने ईशानी की तरफ देखकर कहा। ईशानी चुपचाप उन दोनों के ताने सुन रही थी। जब वो दोनों चुप हो गई तो ईशानी ने आइज रोल करके कहा, अगर तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई है तो दोनों ही नीचे चली जाओ, पता नहीं लोग कितने बेशर्म होते हैं। रुद्राक्ष ने इतनी बार कह दिया कि हमारे फ्लोर पर नहीं आना है, यहाँ आने के बाद भी जाने का कह दिया, फिर भी तुम दोनों अभी तक यहाँ पर हो। ईशानी की बातें आलिया को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थीं। उसने ईशानी का बाजू पकड़ा और तेज आवाज में कहा, जगह तो तुम्हारी भी कहीं और होनी चाहिए, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई ने तुमसे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके फ्लोर पर रहोगी, तुम मेरे साथ नीचे चलो और दादी को भी तो पता चले कि तुम यहाँ किस तरह आधे अधूरे कपड़े पहनकर रहती हो। बोलते हुए आलिया ईशानी को खींचने लगी। ईशानी ने जानबूझकर उसे नहीं रोका, ऐसे लग रहा था वो खुद नीचे जाना चाहती हो। आलिया की इस हरकत पर संजना ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज आलिया ऐसा कुछ भी मत करो जिससे रुद्राक्ष की रेप्यूटेशन पर कोई फर्क पड़े, ये लड़की तो वैसे भी शेमलेस है, इसे कोई कुछ भी कहेगा तो इसे फर्क नहीं पड़ेगा, पर इनडायरेक्टली बात रुद्राक्ष पर आएगी और आई डोंट वांट दिस। संजना के कहते ही आलिया ने झटके से ईशानी का हाथ छोड़ दिया। उसने ईशानी को उंगली दिखाते हुए कहा, बस अपने भाई की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ, बाकी अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ दिन आराम से बिता लो, हाल तो तुम्हारा भी वही होने वाला है जो तुम्हारी बहन का हुआ था, उसने खुद को फांसी लगा ली थी, तुम ऐसा करना अपने लिए कोई ऊंची सी बिल्डिंग ढूंढ लेना जहाँ से मैं खुद तुम्हें नीचे धकेलूंगी। इस बार आलिया की बातें सुनकर ईशानी को गुस्सा आ गया। उसने आलिया का गला पकड़ा और उसे दबाते हुए कहा, मैं ईशानी शर्मा नहीं उसकी छोटी बहन हूँ, उससे पूरी तरह अलग, तुम्हारे भाई ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर दी है, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम लोगों के किसी भी फालतू बकवास को सुनने या सहन करने वाली हूँ। ईशानी ने आलिया को वहीं छोड़ा और गुस्से में कमरे के अंदर चली गई। वहीं आलिया ईशानी के गला दबाने की वजह से खांस रही थी। संजना जल्दी से रुद्राक्ष को बुलाकर लेकर आई। रुद्राक्ष आलिया को संभाल रहा था। आलिया ने रोते हुए कहा, भाई वो लड़की बिल्कुल साइको है, उसने मेरा गला दबा दिया, वो मुझे मारना चाहती है, प्लीज प्लीज आप उसे यहाँ से निकाल दीजिए, वरना वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के चक्कर में कहीं मेरी जान ना ले ले। ठीक है मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन तुम भी इस फ्लोर पर नहीं आओगी, रुद्राक्ष ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। आलिया को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि रुद्राक्ष ने अभी तक ईशानी के बारे में कुछ नहीं कहा था। आलिया ने उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कहा और संजना के साथ वहां से चली गई। उनके जाते ही रुद्राक्ष ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली और सर्द आवाज में बोला, तुमने खुद को इनोसेंट प्रूव कर दिया है लेकिन अपनी बहन को नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलिया का गला दबाने की? रुद्राक्ष के कदम तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वो रूम में पहुंचा तो ईशानी एक डायरी में कुछ लिख रही थी। रुद्राक्ष को देखते ही वो जल्दी से खड़ी हुई। रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ईशानी को समझते देर नहीं लगी कि आलिया ने इतनी देर में उसके खिलाफ अच्छा खासा रुद्राक्ष को भड़का दिया होगा। वैसे भी उसने आलिया का गला पकड़ा था। ईशानी ने अटकते हुए अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मैं उसका गला नहीं दबाना चाहती थी, पर वो जानबूझकर मेरे सामने रिशुदी की बात करती है जिसके बाद मुझे गुस्सा आ जाता है। मैंने तुम्हें रूम से बाहर आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम बाहर क्यों गई? रुद्राक्ष ने सीधे सीधे पूछा। आप भी तो हमें छोड़कर रूम में चले गए थे, अगर आप नहीं चाहते थे कि हमारे बीच में कोई लड़ाई या झगड़ा हो तो आप हमें छोड़कर क्यों गए हैं? आपके वहां पर रहना चाहिए था और अपनी बहन और सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को नीचे भेज देना चाहिए था, ईशानी जल्दी से बोली। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, रुद्राक्ष बोला और उसने ईशानी को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। रुद्राक्ष के पकड़ने का तरीके भर से ईशानी समझ जाती थी कि उसका मूड कैसा है। रुद्राक्ष ने गुस्से में उसे काफी कसकर पकड़ रखा था जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगा। ईशानी ने रुद्राक्ष की आंखों में देखकर कहा, आप मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे पास सिर्फ एक सबूत था जो आपने जला दिया है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, फिर क्यों रोक रखा है आपने मुझे? आलिया और मुझे आमने सामने की जंग लड़ने दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि इस लड़ाई में कोई भी फना हो जाए। रुद्राक्ष ने ईशानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे एक झटके में वहीं पर छोड़कर अपने केबन में आ गया। वो वहां पर आकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों ही मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, फिर कैसे किसी का फना होना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। रुद्राक्ष को अचानक एहसास हुआ कि उसके दिल की बात उसके होठों पर थी। ईशानी को वो पहले से ही पसंद करता था और अब वो फीलिंग प्यार में बदल चुकी थी। रुद्राक्ष ने अपना सिर पकड़ा और धीरे से कहा, प्यार नहीं होना चाहिए था मुझे उससे। ये एहसास होते ही रुद्राक्ष जल्दी से अपने फ्लोर से बाहर जाने के लिए निकला। वहीं ईशानी को तो कुछ पता भी नहीं था, वो अभी तक बेडरूम में थी और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी। कहा ईशानी आलिया से बदला लेने के लिए इतना कुछ प्लान करके बैठी थी और वहीं रुद्राक्ष के उससे शादी करने के बाद सब कुछ बदल गया था। ईशानी बेड पर गुमसुम बैठी थी और उसका सर अपने घुटनों में था। वो नम आंखों से बोली, मुझे आपकी याद आ रही है माँ और मुझे आपके पास वापस आना है। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौट सकूं? पिछले 1.5 महीने में थक गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से और इस खुराना फैमिली से। कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ, कोई मेरा अपना नहीं है, यहाँ तक कि रुद्राक्ष भी नहीं। मैं ही बेवकूफ हूँ जो उनसे दिल लगाकर बैठी हूँ कि वो कभी मुझ पर तरस खाएंगे, मुझे मेरा हक देंगे, मुझे समझेंगे और मेरा साथ देंगे, पर सच में मैं पागल हूँ। जो हाल रुद्राक्ष का था वही कुछ ऐसा ही हाल ईशानी का भी था। दिल ही दिल में वो रुद्राक्ष को चाहने लगी थी। उनके रिश्ते की शुरुआत भले ही काफी खराब रही हो, पर रुद्राक्ष के साथ रहते हुए ईशानी ने ये महसूस किया था कि वो दिल का बुरा इंसान नहीं है। सामने से नहीं बताता पर उसकी केयर करता था।
ईशानी कुछ देर के लिए लेट गई और उसे वहां वैसे ही नींद आ गई थी। रात के लगभग 8 के करीब ईशानी की आंख खुली तो उसने पाया वो अभी तक वैसे ही लेटी हुई है। ईशानी उठी और इधर उधर देखा तो फ्लोर पर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। उसने धीरे से कहा, रुद्राक्ष ने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या अब तक वो मुझसे नाराज है कि मैं आलिया का गला दबा दिया था? कौन सा मैं उसे जान से मार रही थी यार। लगता है अब मुझे ही जाकर बात करनी होगी। खुद से बातें करते हुए ईशानी रुद्राक्ष के केबिन में पहुंची तो वो बिल्कुल खाली था। उसे लगा रुद्राक्ष बाथरूम में है तो उसने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा, इस तरह इग्नोर करने से नहीं होगा रुद्राक्ष, मुझे आपसे बात करनी है। सामने से कोई जवाब नहीं आया तो ईशानी ने दरवाज़ा खोलकर देखा, रुद्राक्ष वहां पर भी नहीं था। उसने पूरा फ्लोर देख लिया पर रुद्राक्ष कहीं नहीं था। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है जो उन्हें कॉल करके कुछ पूछ सकूं। ज़रूर नीचे गए होंगे, भले ही मुझे सब पसंद ना करें लेकिन रुद्राक्ष से बात करने के लिए मुझे नीचे जाना ही होगा। ईशानी ने नीचे जाने का फैसला किया। जल्दबाजी में या यूं कहें रुद्राक्ष की फ़िक्र में वो ये भी भूल गई थी कि इस वक्त उसने क्या पहना है। ईशानी वैसे ही हालत में नीचे पहुंची। ऊपर से नींद में उठने की वजह से उसके बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। सब लोग डाइनिंग एरिया में थे। ईशानी ने देखा रुद्राक्ष वहां भी नहीं है। उसने उनके पास जाकर हिचकिचाते हुए पूछा, रुद्राक्ष कहाँ है? क्या वो आपको बताकर गए हैं कि वो कब तक आएंगे? माया ने ईशानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा वो उसकी तरफ बुरी तरह घूर कर देख रही थी। उनके इस तरह देखने पर ईशानी ने नोटिस किया कि उसने सिर्फ रुद्राक्ष का शर्ट पहन रखी है। मैं बाद में आती हूँ कहकर ईशानी जल्दी से वहां से जाने को हुई। तभी माया ने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्त आवाज में कहा, क्या हमारे घर में तुम्हें पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं मिले जो तुम ये रुद्राक्ष का शर्ट पहनकर घूम रही हो? यहाँ काम करने वाले इतने लोग हैं, वो तुम्हें इस हाल में देख रहे हैं। तुम्हें हमारे घर की इज्जत की कोई फिक्र नहीं होगी लेकिन हमें बखूबी है। जाकर कपड़े बदल कर आओ और बताओ हमारा पोता कहाँ गया है, हमने उसे आज पूरे दिन में नहीं देखा। ईशानी से बात करके माया ने उसी वक्त रुद्राक्ष को कॉल किया तो उसका नंबर बन जा रहा था। बाद में उन्होंने संजना को कॉल किया तो रुद्राक्ष वहां पर भी नहीं था। अगले 20 मिनट में पूरी खुराना फैमिली उन सबको कॉल कर चुकी थी जिनके पास रुद्राक्ष जा सकता था, लेकिन रुद्राक्ष किसी के पास नहीं था। रुद्राक्ष के इस तरह मिसिंग होने पर जहां खुराना फैमिली परेशान थी, वहीं ईशानी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे कभी रुद्राक्ष की इतनी परवाह होगी। क्या लगता है कहाँ गया होगा रुद्राक्ष? पाठ पढ़ने के बाद समीक्षा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ में।